ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में ठीक वैसे ही प्रासंगिक है जैसा कि पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में था। रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई सत्र में अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि G20 ने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने ब्राजील की तरफ से भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण उत्पन्न खाद, ईंधन और उर्वरक संकट से दक्षिण के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए कोई चर्चा तभी सफल हो सकती है जब वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन के दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद भारत चौथा वक्ता होगा। G20 के कार्य समूहों के साथ साथ शेरपा वार्ता के दौरान भी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन से इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों की बातचीत वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि ये साल दोनों देशों के लिए विशेष है क्योंकि भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पुर्तगाल के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को काफी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन सहित अन्य क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर प्रदान करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों ने मजबूत रक्षा संबंधों सहित कई अन्य विषयों पर भी बात की। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीट और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने के साथ ही ग्रामीण नागपुर और उत्तरी महाराष्ट्र में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता श्री अनिल देशमुख को उनके वाहन पर पथराव के कारण सिर में चोटें आई हैं। ये घटना तब हुई जब वे ग्रामीण नागपुर के काटोल ब्लॉक में एक रैली से लौट रहे थे। पथराव के पीछे असामाजिक तत्वों के होने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल देशमुख को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार कल समाप्त हो गया। मतदान बुधवार को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की एक एक सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को तत्काल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से कम होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत 2047 तक प्रतिवर्ष 10,000 मिलियन मीट्रिक टन की बंदरगाह प्रबंधन क्षमता का लक्ष्य बना रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।